प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय। इस प्रोग्राम में मैं इला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अब तक हमने ये जाना कि विचार, भावनाएं, कर्म, वृत्ति, भाग्य सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सकारात्मक विचार हमारे भाग्य बनाते हैं, पर अगर हमारे भाग्य का निर्माण हम ही खुद कर रहे हैं, हमारा भाग्य हम खुद ही रच रहे हैं, तो रचयिता इसमें क्या कर रहा है? आइए इसके बारे में बात करते हैं सिस्टर तृप्ति से। ओम शांति सिस्टर तृप्ति।
ओम शांति। तो जैसा हमने देखा, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। क्राइस्ट ने कहा है, एज यू सो सो शैल यू रीप। गीता के भगवान ने कहा है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और हमने भी यह देखा कि हम जैसा कर्म करते हैं, कर्म माना थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। जिस प्रकार के हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, वर्ड्स क्रिएट करते हैं और जिस प्रकार का एक्ट करते हैं, वही लौट कर भाग्य के रूप में हमारे सामने आता है। पॉजिटिव एक्शंस होंगे तो भाग्य पॉजिटिव होगा, पर अगर एक्शंस नेगेटिव हुए तो भाग्य हमें जरा नेगेटिव सा दिखेगा। न्यूटन का भी लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब हम यह कहते हैं मेरे भाग्य की रचना मैं कर रही हूं, तो प्रश्न उठता है फिर इसमें रचयिता या भगवान या गॉड, इसका क्या रोल है? तो आइए हम जाने हमारे भाग्य में हमारा क्या रोल है और इसमें भगवान का या गॉड का क्या रोल है। जब हम अपने भाग्य की रचना स्वयं करते हैं और अगर हमें नेगेटिव आउटपुट्स नजर आते हैं, भाग्य नेगेटिव नजर आता है, तो हम क्या करते हैं? वीक हो जाते हैं और तब भगवान को बोलते हैं, भगवान आओ और इसे ठीक कर दो, मेरा जो नेगेटिविटी सामने नजर आ रही है उसे जरा पॉजिटिविटी में बदल दो। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और जब भगवान हमारी बात मानता नहीं है तो उससे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। तो हम यह जान लें कि भगवान का रोल क्या है, ताकि हमें यह क्लियर हो जाए कि भगवान से हमें इंटरैक्ट क्या करना है, उससे हमें अपेक्षा क्या रखनी है। भगवान का रोल है कि वह हमें गाइड करे, हमें ज्ञान दे कि क्या सही है क्या गलत है। और ज्ञान देने के बाद डिसीजन किसका है? डिसीजन मेरा है कि मैं भगवान की बात सुन भी सकता हूं और मैं भगवान की बात अनसुनी भी कर सकता हूं। पर भगवान का क्या क्या काम है? गाइडेंस देना, ज्ञान देना, नॉलेज देना। तो एक भगवान आकर बताता है कि बच्चे यह करना सही है, सत्य की राह पर चलना सही है। और कभी कभी हम यह देखते हैं कि मन में ठान भी लेते हैं कि मुझे सच बोलना है, पर परिस्थितियों में कभी हम इस प्रकार से फंस जाते हैं कि जब परिस्थिति आती है तो सत्य बोलने की हिम्मत नहीं होती, मुंह से झूठ निकल जाता है।
इसीलिए शायद हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि हे भगवान मुझे सत्य बोलने की शक्ति दे,
शक्ति दे, कहते हैं ना। इसलिए कहते हैं कि भगवान का दूसरा रोल है शक्ति देना, पावर देना, उसके बताए गए रास्ते पर चलने की शक्ति देकर हमें शक्तिशाली बनाना। हम अपने बच्चों का ही एग्जाम्पल लें। बच्चे ने अगर होमवर्क नहीं किया है, स्कूल में अगर टीचर उसे पनिश करती है और हम सामने जाकर खड़े हो जाएं, टीचर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इसे पनिशमेंट मत दीजिए, दूसरे दिन बच्चा फिर होमवर्क नहीं करके जाएगा क्योंकि वह जानता है कि टीचर जब भी मुझे पनिश करेगी मेरी मम्मी आ जाएगी और मुझे बचा लेगी। तो इसमें हम अपने बच्चे का भाग्य बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? शॉर्ट टर्म के लिए भले ही हमें यह लगे कि हम बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, पर अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसे इमोशनली वीकर बना रहे हैं, मॉरल वैल्यूज उसके हम कहीं ना कहीं डिप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड लॉन्गर टर्म में हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। अगर कोई यह सवाल करे कि इस एक्ट से एम आई एक्टिंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, अ गुड पेरेंट, क्या मैं एक अच्छे पालक होने का कर्तव्य निभा रही हूँ, तो उत्तर हम जरूर कहेंगे नहीं, यह एक अच्छे पालक की निशानी नहीं है। उसी प्रकार जब हम कोई कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, अगर हम अच्छे कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है, पर बुरे कार्मिक अकाउंट्स का रिजल्ट हमें हमेशा बुरा मिलता है। और उस समय अगर मैं गॉड को कहूँ आके इंटरवीन करो, मुझे पनिशमेंट मिल रही है उस कार्य के लिए जो मैंने ही किया है, पर मैं कहूँ गॉड आके इंटरवीन करो, सिचुएशन को चेंज कर दो, तो क्या ये मेरा कहना ठीक है? और अगर गॉड जो कि परफेक्ट पेरेंट है वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा, किसी शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए वो अपने बच्चे का लॉन्ग टर्म भविष्य को इम्पैक्ट नहीं करना चाहेगा, तो वह बीच में इंटरफियर नहीं करता है। ये हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, हमें इन्हें सेटल करना है, क्योंकि यह नेचर ऑफ लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का नेचर है, इसे कोई बदल नहीं सकता। जो हम करते हैं उसका हमें भुगतान करना ही होता है। तो गॉड क्या करता है, बच्चे पे दुख हो रहा है, उस पर प्रॉब्लम्स आई हुई है, क्या वो सिर्फ देखता रहता है? नहीं, उस वक्त भगवान या गॉड हमें ज्ञान देता है, नॉलेज देता है कि इस वक्त बच्चे जब तुम मझधार में हो उस वक्त सही रास्ता कौन सा है, वह हमें सही रास्ता दिखाता है। और दूसरी बात क्या करता है, उस सही रास्ते पे चलने की शक्ति देता है, ताकि उस बच्चे पर उस रास्ते पर चलकर बच्चा शक्तिशाली हो जाए, तूफानों से आसानी से जूझ सके, और तूफान आए भी, क्योंकि आना तो है, कार्मिक अकाउंट है, आना तो है प्रॉब्लम्स को, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में से सक्सेसफुली बाहर कैसे निकल जाएं, हंसते हंसते बाहर कैसे निकल जाएं, इसका ज्ञान और इसके लिए शक्ति हमें भगवान देता है।
हमें ये तो समझ में आया कि गॉड से हमें ये नहीं कहना है कि ये सिचुएशन बदल दे, क्योंकि ये तो मेरे कार्मिक अकाउंट्स हैं, ये मेरे साथ होना ही था। हमें मांगना है उनसे शक्ति सोचने और समझने की, पर ये हम उनसे किस तरह मांगे?
गॉड से मांगना नहीं है। अब तक हम क्या करते हैं, भगवान यह दे दो, वह दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और अब हम क्या जानते हैं, वो हमारा पिता है, हम सभी आत्माएं उस पिता की संतान हैं, और जो पिता का होता है वह अपने आप ही बच्चों का हो जाता है। पिता की कोई भी चीज मांगनी नहीं पड़ती है, वह अपने आप ही हमें ले लेनी होती है। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, मेडिटेशन में हम गॉड से कनेक्ट करते हैं, हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, और उसके जितने भी गुण हैं वो गुण ले लेते हैं, जब तक चाहे, जितनी देर तक चाहे, जितनी मात्रा में चाहे लेते रहते हैं। और उसी प्रकार परमात्मा के पास शक्तियां भी हैं, तो हम क्या करते हैं, उन शक्तियों को ले लेते हैं, उससे मांगते नहीं, क्योंकि पिता पर पुत्र का अधिकार होता है, और उस अधिकार से हम अपने परमात्मा से, पिता से जो चाहे वह ले लेते हैं। बच्चे को अगर चोट लग जाए तो बच्चा रोने लगता है और मम्मी मम्मी कह के पुकारता है, सबसे पहले उसे अपने माँ की याद आती है। उसी प्रकार हम आत्माओं को जब चोट लग जाती है, कोई दुख पहुंचता है, कोई प्रॉब्लम्स में हम घिर जाते हैं, तो अपने आप ही हमें परमात्मा याद आता है, वह जो हम सबका पिता है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम नजर आए हमें उस परमपिता परमात्मा को याद करना है और उस प्रॉब्लम से जूझने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज्ञान लेना है और उसके बाद शक्ति लेनी है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, आई द सोल, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, परमपिता एक पॉइंट ऑफ लाइट है, परमपिता शक्तियों से भरपूर है, वह शक्तियों का सागर है और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। परमपिता से निकलती शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूं। तो इस प्रकार का चिंतन जब हम करते हैं और उस शक्ति की फीलिंग को, शक्ति की वाइब्रेशन को और उस शक्ति के थॉट्स को जब हम परमपिता से अपने आप समा लेते हैं मन में, यही मेडिटेशन है। और हम थोड़ी देर में देखते हैं हमारी बैटरी जो डिस्चार्ज थी वह चार्ज हो जाती है, शक्ति से भरपूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो थॉट मैंने जेनरेट किया, किसने जेनरेट किया? मैंने जेनरेट किया। और जिस प्रकार का थॉट हम जेनरेट करते हैं, फीलिंग्स किस प्रकार की जेनरेट होती है, थॉट के आधार पर। अगर निर्बलता का थॉट क्रिएट करते हैं तो फीलिंग कैसी होगी, निर्बलता की, कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इस प्रॉब्लम का सामना नहीं कर सकती। वर्ड्स में भी वही देखेगा, एक्शंस में भी वही देखेगा। पर जब हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, शक्ति के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके आधार पर शक्ति की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, और इमोशंस जो डेवलप होंगे वह भी शक्तिशाली होंगे, वर्ड्स भी शक्तिशाली होंगे, और जब एक्शन हमारा नजर आएगा वह भी शक्ति से भरपूर होगा। तो इस वक्त हमने क्या किया, ज्ञान, परमपिता का ज्ञान लिया कि सत्य के आधार पर चलो, और शक्ति परमपिता से लेते लेते वो थॉट्स खुद में जेनरेट किए और वो शक्ति दिखाई दी हमारे वर्ड्स और एक्शंस में, और हमने उस ज्ञान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया। सत्य की राह पर जब हम चलते हैं तो फिर हम तब फिर हमारा जो रिजल्ट होता है वह भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव अकाउंट्स क्रिएट करना हम बंद कर देते हैं। और अक्सर हमने यह देखा है, आज जब हमें यह पता चला है कि अब हमें नेगेटिव अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने हैं, सिर्फ पॉजिटिव अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, तो आज के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मेरे अकाउंट्स अब पॉजिटिव ही हों। पर आज तक का क्या, जो मैंने इतने नेगेटिव अकाउंट्स क्रिएट करके रखे हैं, तो उन नेगेटिव अकाउंट्स का रिजल्ट तो आना ही है। पर वो जब रिजल्ट आएगा तो अब हम सब क्या करेंगे, परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, ज्ञान की किरणें लेंगे, शक्ति की किरणें लेंगे और ज्ञान के आधार पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इससे क्या होगा, वह जो प्रॉब्लम है वह निकल जाएगी और हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तूफान आए, आंधी आए, पर अगर मैं स्टेबल रहूं, इसका मतलब मैंने अपना यह अकाउंट सेटल कर दिया। पर माना मैं स्टेबल नहीं रहा, मुझे गुस्सा आ गया, सामने वाले पे क्रोध आ गया, तो अब मैंने क्या किया, मैंने अब फिर से एक और नेगेटिव अकाउंट उस आत्मा के साथ क्रिएट कर लिया और फिर उसी अकाउंट का हिसाब मुझे बाद में चुक तो करना पड़ेगा। तो कोई भी आंधी तूफान आए उसमें हमें क्या रहना है, स्टेबल रहना है, परमात्मा से ज्ञान और शक्ति लेकर, और स्टेबल रहकर हमें क्या करना है, अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स सेटल करने हैं।
सिस्टर तृप्ति के साथ बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, पर बीच में हमारे भाई बहनों के अनुभव हासिल करते हैं।
मैं लगभग 10 साल से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का छात्र हूं। जैसे ही हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं, वैसे ही हम एक आम आदमी से पहले ब्राह्मण बनते हैं और फिर धीरे धीरे देवता बनते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें ईश्वर स्वयं पढ़ाते हैं। हम लोग रोज मुरली सुनते हैं और मुरली ये भगवान का संदेश होता है, उसे सुनकर उस भगवान का ज्ञान हम अपने में धारण करते हैं। शिव बाबा की संतान होने के कारण हम लोगों में दिव्य गुण प्राप्त हुए हैं हमें, और शांति, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, सुख, आनंद, इन ये सब गुण हमें दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आप सबको अपील करता हूँ कि आप सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के छात्र बनकर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से शक्तियाँ प्राप्त करें।
अभी हमने सुना कि हमारे भाई बहनों को इस जानकारी का कितना लाभ हुआ। इस विषय में और चर्चा करते हैं सिस्टर तृप्ति से।
तो हमने जैसे देखा, सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, प्रॉब्लम्स आएंगी, आंधी तूफान आएंगे, तो सत्य की नाव हिलेगी भी और डुलेगी भी, लेकिन डूबती कभी भी नहीं। और जो दूसरी नाव होती है, झूठ की नाव, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या होता होगा।
इसीलिए शायद हमें बचपन से यही बताया गया है कि सत्य की सदैव विजय होती है, झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं।
सही है। हम अगर कोई उदाहरण भी लेने की कोशिश करें कि जैसे आज हम सब देख रहे हैं, आज की जिंदगी में दौड़ भाग है, सभी हम अपने अपने जीवन को, जिंदगी को और सुख से भरना चाहते हैं, खुशियों से भरना चाहते हैं, पर इस वक्त क्या हो रहा है, लोग कंफर्ट को खुशियों के साथ इक्वेट कर रहे हैं, और कंफर्ट के लिए इंसान की दौड़ लगी हुई है और पैसे कमाने में, और पैसे कमाने में, ताकि उसका जीवन कंफर्ट से भरपूर रहे। पर इस दौड़ में हो क्या रहा है, कंफर्ट के साधन हमें मिलते जा रहे हैं, और हम देखते भी हैं किसी घर में सब कुछ होता है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसे भरपूर हैं, वह कंफर्ट की हर चीज जो चाहिए वो सब कुछ है, परिवार अच्छा है, पर कहीं ना कहीं मन में दुख है, अशांति है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घुड़दौड़ में मैं कोई इम्पॉर्टेंट और प्रेशियस वस्तु को पीछे छोड़ती जा रही हूँ, या कोई ऐसी बात तो नहीं जिसके तरफ मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, मुझसे छूटती जा रही है। हम देखते भी हैं कभी कभी इस कंफर्ट को पाने के लिए हम कोई शॉर्टकट ऐसा अपना लेते हैं जिसका हम जानते हैं पॉजिटिव आउटपुट नहीं होगा, किसी और को वह जाना था, लेकिन अगर वह हम अपनी तरफ खींच लेते हैं उस कंफर्ट को, तो क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म में अपना फायदा कर लेते हैं, हमारी बैलेंस शीट प्लस होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है, पर ये जो अंदर की बैलेंस शीट है उसका क्या, उसमें तो घाटा हो गया, क्योंकि अगर हमने कोई कंफर्ट की चीज अपनी तरफ खींच ली है जो जानी कहीं और चाहिए थी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले की दुआओं की जगह उनके हम बुराइयां, बुरे विचार अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट को नेगेटिव बना रहे हैं। और हम सब आज के दौर में बाहर के बैलेंस शीट को तो पॉजिटिव बनाने में लगे हुए हैं, पर कहीं हम अपने इस अंदर की बैलेंस शीट को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट पाने के लिए कहीं हम अपने लॉन्गर टर्म भाग्य को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे, और इन छोटी छोटी प्राप्तियों के पीछे कहीं हम बड़ी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट तो नहीं कर रहे हैं। तो जरूरी है हम आज से ही अपने लाइफस्टाइल का विश्लेषण करें, उसे एनालाइज करें, कि जरूरी है हम सब खुश रहें, हम जो चाहते हैं हमें मिले, पर उस सब के लिए हम कोई ऐसा शॉर्टकट न अपनाएं जिससे हमारी अंदर की बैलेंस शीट नेगेटिव बनती जाए।
पर सिस्टर तृप्ति, कभी कभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस में हमारा कोई काम है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो बिना रिश्वत दिए काम होता नहीं है, तो हम शॉर्ट टर्म फायदे के लिए हम रिश्वत दे देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमें खुद को रोकना है, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना है और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोचना है।
बिल्कुल सही कहा इला आपने। और आपने जैसा कहा कि ऐसी बातें हमें दिखती रहती हैं, रोड पर भी दिखती हैं, ट्रैफिक पुलिस आता है, हमें कहता है रॉन्ग साइड से जा रहे थे तो 300 रुपीज फाइन देना होगा। हम कहते हैं कोई बात नहीं, 50 रुपीज ले लो, और हम क्या करते हैं, शॉर्टर टर्म में अपने 250 तो बचा लेते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में जो हम अपने आप को इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हम अभी नुकसान कर रहे हैं दूसरी आत्माओं का और इस एनवायरनमेंट का, वो लौट कर कभी न कभी किसी न किसी रूप में मेरे सामने आना ही है। तो आपने बिल्कुल सही कहा इला, अब हमें क्या होना है, अवेयर होना है, सजग होना है। बाहर की बैलेंस शीट को तो पॉजिटिव बनाना ही है, लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि कहीं मेरे अंदर की बैलेंस शीट कहीं वो नेगेटिव तो नहीं हो रही, मेरा जो भाग्य है कहीं मैं उसे इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि भाग्य का रचयिता कोई और नहीं, मेरे भाग्य का रचयिता मैं ही हूँ।
आज हमें सिस्टर तृप्ति ने बताया कि हमारे भाग्य की रचना हम स्वयं ही कर रहे हैं, भगवान हमारी मदद जरूर कर रहा है ज्ञान देके। तो भगवान हमें जो ये ज्ञान दे रहा है, हमें उसी रास्ते पे चलना है। भगवान हमें शक्ति भी प्रदान कर रहा है ताकि हम इस ज्ञान के रास्ते को ना छोड़ें। हमें आशा है कि आज की इन बातों का आपको अवश्य लाभ होगा। इन सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर तृप्ति का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। अब तक के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे।
ओम शांति।
तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, अल्लाह, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं एक ज्योति हूं, मेरा धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। मैं अवतरित हुआ हूं इस पुरानी कलयुगी दुनिया को परिवर्तन कर नई सतयुगी दुनिया की पुनर्स्थापना के लिए। मीठे बच्चों, अपने को पहचानो और मुझे याद करो तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति और पवित्रता से संपन्न हो जाओगे।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबनी संताने हैं।
सत्यम शिवम सुंदरम
परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं।
सत्यम शिवम सुंदरम
ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर, मन उसको नमन बार बार करता,
मन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है,
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता।
अनादि है,
अनादि है,
शिव अनंत है,
अनंत है,
जीवन मधुबन
मधुबन
शिव वसंत है।